स्वयं प्रकाश की कहानी नीलकांत का सफर। नीलकांत सफर कर रहे थे। चूंकि वो जनता थे इसलिए थर्ड क्लास में सफर कर रहे थे, और चूंकि वो थर्ड क्लास था इसलिए ट्रेन के आखिरी डिब्बे का आखिरी कंपार्टमेंट था। बाकी ट्रेन या तो फर्स्ट थी या शयनयान या आरक्षित था और कुछ। लगता था साधारण थर्ड के इस कंपार्टमेंट को भी पीछे ही पीछे मात्र दयावश या औपचारिकता निभाने के लिए जोड़ दिया गया है। जब ट्रेन कहीं रुकती तो प्लेटफॉर्म के बीचों बीच फर्स्ट के डब्बे होते, जहां से चाय पानी, पान सिगरेट, फल फ्रूट, पूछताछ, स्टेशन मास्टर सब सामने ही होता। साधारण थर्ड अक्सर प्लेटफॉर्म से बहुत दूर जंगल में रुकता, जहां से हर स्टेशन पर बहुत सारे प्यासे अपने अपने लोटे गिलास लेकर वाटर हट की तरफ भागते, जो अक्सर सूखी या खाली या बंद होती। तब आगे का कोई नल या प्याऊ बर्र का छत्ता बन जाता। दो चार पानी पी पाते, चार छह भर पाते कि सीटी बज जाती और लोग वापस दुम की तरफ भागते। ये सब इतना तय और सहज या शाश्वत सा था कि कोई इस बारे में नहीं सोचता। सोचता भी तो बस यही कि मुसाफिरी में तो ये सब चलता ही है। नीलकांत इसी डिब्बे में थे। डिब्बे में भारी भीड़ थी। लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए थे। कुछ लोगों की नजर में हो सकता है ये उचित ही हो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप उन कुछ लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि आपको भी इन्हीं स्थितियों में सफर करना पड़ता है। तो लोग एक दूसरे के ऊपर लदे जा रहे थे, जितने बैठे थे उनसे ज्यादा खड़े थे, और कुछ तो लटके भी थे। ऊपर की सीटें सामान से भरी हुई थीं और फर्श औरतों से। दोनों जगहों पर बीच बीच में कुछ आदमी भी फंसे हुए थे। बच्चों को हर जगह पाया जा सकता था। वे पानी मांग रहे थे और गर्मी से बेजार हो रहे थे। उन्हें पानी पिलाया जा रहा था और पेशाब करवाया जा रहा था। वे रो रहे थे या सो रहे थे या झींक रहे थे या छींक रहे थे। वे हैरान थे कि हलकान थे। डिब्बे की सीटों पर 1, 2, 3 बाकायदा नंबर पड़े हुए थे और एक तरफ की दीवार पर लिखा हुआ था 35 सवारियों के लिए। इसे पढ़कर अंदाजा होता था कि रेलवे में काम करने वाले आदमी कितने मजाकिया हैं। अब टॉयलेट का आलम देखिए। इस डब्बे के यात्री थर्ड क्लास के मुसाफिर, खासकर नन्हे या किशोर मुसाफिर, जनरल नॉलेज के क्षेत्र में कुछ कमजोर थे और दिशा मैदान या जंगल के आगे की वैज्ञानिक प्रगति से अनभिज्ञ थे। टॉयलेट में घुसते ही पता चलता था कि वे बेचारे काफी देर इसी दुविधा में पड़े रहे होंगे कि किधर मुंह करके बैठा जाए। इस पर टोटियों में पानी भी नहीं था। साबुन के स्थान पर किसी धन प्राण ने ढेर सारी मिट्टी जरूर भर रखी थी, और आईना नहीं था तो क्या बुरा था। ऐसी स्थिति में अपना थोबड़ा देखकर खामखा आदमी का मूड ऑफ ही होता। इस संडास में तीन सज्जन बाहर को मुंह उचकाए इधर उधर सहारा लिए खड़े थे। सोचना डर पैदा करता था कि क्या हो यदि इस समय डिब्बे में किसी सज्जन या देवी को इस भव्य कक्ष की आपातकालीन आवश्यकता पड़ जाए, जिस पर प्रसाधन लिखा है। इसी डिब्बे में नीलकांत सफर कर रहे थे, खड़े हुए इसी संडास में। खैर, बाद में उन्हें डिब्बे में धसने में सफलता भी मिल गई, पर संडास की बदबू दिमाग से गई नहीं। और हालांकि इस संघर्ष में उनकी बूढ़ी अटैची का कमजोर हैंडल टूट गया, नतीजतन उन्हें उस बूढ़ी अटैची को बच्चों की तरह छाती से चिपका कर रखना पड़ा। पर घुस तो गए ही, टॉयलेट से तो अच्छे ही हैं। यहां आकर नीलकांत ने देखा कि जहां बहुत सारे आदमियों को पांव सरकाने की भी जगह नहीं है और कई अब तक लटक रहे हैं या निरंतर इस ताक में टंगे हैं कि कब आदमियों की तरह आराम से पैर टिकाने या पुट्ठे टिकाने का मौका मिल जाए, वहीं कुछ आदमी लेटे हुए हैं और बाकायदा पूरी बर्थ घेर कर लेटे हुए हैं। इससे उन्हें उस झगड़े का भी सुराग मिल गया जो न जाने कब से खड़ों और लेटों में चल रहा था। वे कह रहे थे, हमने भी किराया दिया है। जवाब मिल रहा था, हम ठेठ वहां से आ रहे हैं जहां से ये ट्रेन बनी है। अरे ठेठ बंबई से है। वे कह रहे थे, आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है, चाहे बंबई से आओ चाहे लंदन से। जवाब मिल रहा था, अजी साहब एक बर्थ के लिए कुली को 20 रुपए दिए हैं, 20 रुपए। रात भर का मामला है, आप तो घंटे 2 घंटे में उतर जाएंगे। इस पर हल्ला मचाने वाले थोड़े ढीले पड़ जाते, पर थोड़ी देर में वही सब फिर शुरू हो जाता। नीलकांत को लगा, जो लेटे हुए हैं वे कितने हृदयहीन हैं। माना कि आपने 20 रुपए दिए हैं और आपको बहुत दूर जाना है, पर कम दूरी वाले क्या मुफ्त में सफर कर रहे हैं? क्या उन्हें टिकने भर का भी अधिकार नहीं है? औरतें तक खड़ी हुई हैं और ये बेशरम पैर पसारे पड़े हुए हैं। ये कोई इंसानियत है? और उसे देखो, सीखिया पहलवान को कैसे आंखें नीचे पड़ा है, जैसे गहरी नींद में सो रहा हो, समझता है हम धोखे में आ जाएंगे। बोलने वाले भी साले यूं ही है, घंटे भर से काए काए कर रहे हैं। ये नहीं होता कि हाथ पकड़कर उठाकर बैठा दे सालों को, देखते हैं कोई क्या कर सकता है। 40 आदमी खड़े काए काए कर रहे हैं और 4 बेशर्मी से पड़े हुए हैं। धन्य हो, और जिन्हें जरा भी टिकने की जगह मिल गई है वे ऐसे चुप हैं जैसे खड़े हुओं से कोई हमदर्दी नहीं, लेटे हुओं पर गुस्सा नहीं। नीलकांत ने घड़ी देखी, ट्रेन चले हुए आधा घंटा से भी ज्यादा हो गया था। आमतौर पर इतनी देर में मुसाफिरों के झगड़े खत्म हो जाते हैं और जान पहचान हंसी खुशी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर क्या बात है, आदमी क्यों इतना लड़ता है, किसे इस ट्रेन में अनंत काल तक रहना है, नीलकांत ने सोचा। तभी अचानक नीलकांत को महसूस हुआ कि गर्मी कुछ ज्यादा ही है। पंखे देखे चल रहे थे, खिड़कियां बंद थीं। नीलकांत को आश्चर्य हुआ कि इस तरफ उनका ध्यान अब गया, ये भी कि अब तक किसी ने खिड़कियां खोली क्यों नहीं। उनके पास वाली खिड़की से सटकर एक लड़का खड़ा था। नीलकांत ने लड़के से कहा, अरे जरा वो खिड़की खोल दीजिए। नहीं खुलती, लड़के ने बत्तीसी निकालते हुए जवाब दिया। नीलकांत को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने लड़के को अटैची पकड़ाते हुए कहा, हटिए मैं खोलता हूं। हटा हटी में एक बच्चे का पैर कुचल गया। खैर, नीलकांत ने खुद जोर लगाया लेकिन खिड़की टस से मस नहीं हुई। नीलकांत ने खूब जोर लगाया, जांच परख की, फिर जोर लगाया, फिर दिमाग लगाया, फिर ताकत, फिर दिमाग, लेकिन खिड़की पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी भी नहीं खुली, तीसरी तक उन्हें किसी ने जाने ही नहीं दिया। बीसियों लोग पहले ही कोशिश कर चुके थे, सारी की सारी खिड़कियां जाम थीं। नीलकांत हताश हो गए, पसीना पसीना हो गए, खींच गए। डिब्बे के बहुत से लोग उनकी इस हरकत को देख रहे थे और खिड़कियों पर विभिन्न टिप्पणियां कर रहे थे। एक गाय जैसे चेहरे वाले बाबा, अरे नहीं खुलती तो छोड़ो ना, बर्दाश्त कर लो की मार्मिक अपील कर रहे थे। एक उग्र से व्यापारी सज्जन कह रहे थे, साले सब रेलवे वाले चोर हैं, इसलिए खिड़की को छोड़ो, वो नहीं खुलेगी। ऊपर की सीट पर आराम से बैठा एक दढ़ियल गरज रहा था, तोड़ दो, मैं कहता हूं तोड़ दो, नहीं खुलती तो। यानी लोग अपने अपने दिमाग के हिसाब से नीलकांत को सुझाव दे रहे थे और जिनसे ये भी नहीं हो रहा था वे सरकार को गालियां दे रहे थे, और बाकी सब इस सब को टाइम पास करने का नुस्खा समझकर चुपचाप सबका मजा ले रहे थे। नीलकांत ने जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा तो वो लड़का जल्दी करने लगा, भाई साहब, अरे भाई साहब अपनी अटैची संभालो। लगा कि अब उलझ पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे किसी पर, चुपचाप अटैची संभाल ली। आखिर गलती किसकी है, नीलकांत सोचने लगे। जब ट्रेन में इतनी जगह नहीं है तो क्यों इतने टिकट देते हैं, ज्यादा मुसाफिर हैं तो ज्यादा गाड़ियां क्यों नहीं चलाते। लोग लटक लटक कर सफर कर रहे हैं, लोग सामान रखने की जगह पर भी बैठे हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, लोग टॉयलेट में भी भरे हुए हैं, और रेलवे फिर भी घाटे में जा रही है। क्यों, कौन दोषी है? क्या वो बुकिंग क्लर्क जिसने इतने ज्यादा टिकट दे दिए, या वो मिस्त्री जिसने रेल रवाना होने से पहले खिड़की दरवाजे नहीं जांचे, या वे सज्जन जो कुलियों को 20-20 रुपए देकर पूरी बर्थ पर कब्जा किए हुए हैं, या वे अमीर जिनके लिए 5-5 फर्स्ट के डिब्बे बीच में लगाए जाते हैं। सोचने लगे पर उलझ गए, पर सोचने तो लगे, हालांकि नतीजे तक नहीं पहुंचे पर उलझे तो, पर पता नहीं क्यों इन चीजों पर सोचने लगे। हालांकि पढ़ते तो धर्मयुग, इलस्ट्रेटेड वीकली वगैरह ही हैं, वे लोग तो चाहते थे नीलकांत प्रदूषण के बारे में सोचें, जातियों के तुलनात्मक विवेचन पर सोचें, परामनोवैज्ञानिक और आधुनिक प्रेत विद्या के बारे में सोचें, स्वीडन के मुक्त यौन और अमेरिका के स्वतंत्र पत्रकारिता के बारे में सोचें, सोचें कि शास्त्री जी मरे या उनकी हत्या हुई, पर ये तो अपनी दुर्दशा के लिए दोषी कौन है इस पर सोचने लगे। गजब हो गया। खैर, सेठ जी चिंता न करें, नीलकांत इन तकलीफों के बारे में तभी तक सोचेंगे जब तक उन्हें बैठने के लिए ठीक ठाक जगह नहीं मिल जाती, या हद से हद जब तक ये सफर जारी है। गाड़ी से उतर जाने पर वो गाड़ी के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे और फिर वही सोचने लगेंगे जो सेठ लोग उनसे सुचवाना चाहते हैं। पर क्या पता, अगर कल को कोई दूसरी तकलीफ आएगी ही और वे सोचने लगे कि उसका असली जिम्मेदार कौन है तो। नीलकांत को प्यास लगी, स्टेशन अभी दूर था। सामने एक लुगाई अपने बच्चे को सुराही से पानी निकालकर पिला रही थी। नीलकांत की इच्छा हुई पर लुगाई और सुराही और गिलास सब बेहद गंदे थे। नीलकांत हाइजीन के बारे में सोचने लगे और नतीजा ये निकला कि प्यासे रह गए। रुमाल निकालकर गर्दन पोछी, पंखों की तरफ देखा, बराबर चल रहे थे, पर लगता था एग्जॉस्ट फैन है जो हवा देते नहीं हवा खींचते हैं। इधर उधर नजर दौड़ाई कि कहीं टिकने की कोई संभावना नजर आ जाए, नहीं आई। हार कर फिर खिड़कियों के बारे में सोचने लगे। नीलकांत की इच्छा हुई वापस उसी टॉयलेट में चले जाएं। खड़े यहां भी हैं, वहां भी थे। वहां कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो थी। माना कि बदबू, गंदगी और सबसे ज्यादा अपने संडास में होने का एहसास, ऐसी ही कुछ परेशानियां थीं। पर यहां कम परेशानी है और सुविधा क्या है सिवा इस गरिमा के डिब्बे में है, संडास में नहीं। लिहाजा चलो वापस संडास में, लेकिन वापस जाना असंभव था। बहुत कुछ बाहर था और कुछ भीतर भी था जो रोक रहा था। झक मारकर भविष्य के बारे में सोचने लगे। संडास वाले का क्या भविष्य है? किसी को भी हाजत होते ही वहां से बाहर निकाल दिया जाना, और यहाँ संभावना है कि कभी तो कोई स्टेशन आएगा तो कुछ सवारियां उतरेंगी और उन्हें भी पुट्ठे टिकाने की जगह मिलेगी ही। उस सुंदर भविष्य के लिए जब वे दूसरों की बराबरी में बैठे होंगे, इस वर्तमान में कुछ कष्ट उठा लें तो क्या हर्ज है? खिड़कियां ही खुल जाती तो तन बदन थोड़े ठंडे होते, कईयों को उन पर टिकने की जगह भी मिल जाती और खिड़की साली उनके बारे में सोचने से तो खुलने से रही। कोई औजार वौजार होता तो। अब नीलकांत सोचने लगे कि कौन सा औजार होता जिससे खिड़की खोली जा सकती, और इससे भी पहले कौन सी तरकीब होती जिससे इन पसरे हुए सज्जनों को उठाकर बैठने पर मजबूर किया जा सकता। एक तरीका तो ये है कि लड़ लिया जाए, और तय है कि अधिकांश लोग उनका ही साथ देंगे, और दूसरा ये है कि स्टेशन आने पर गार्ड को बुलाकर लाया जाए और कहा जाए कि इन महापुरुषों को। तभी गाड़ी रुक गई। नीलकांत ने सोचा चलो गार्ड को बुला लाएं, पर वो मिलेगा? और मिला भी तो आने के लिए तैयार हो जाएगा, और आ भी गया तो इनको उठा सकेगा? और अगर वो फर्स्ट के किसी मुसाफिर के साथ चाय पी रहा हो तो? और साफ मना न भी करे चलने के लिए, पर चले चले तब तक गाड़ी ही चल पड़े तो? और मान लो नीलकांत किसी तरह चढ़ भी जाए और फिर ये जगह भी न मिले तो? और पहली बात तो ये है कि अभी अटैची किसको संभाल कर जाए, ताला इसमें है नहीं, और हालांकि इसमें ऐसा क्या है जो किसी के काम आ सके? फिर भी, और ये लड़का, हालांकि लेटे हुए लोग उठेंगे तो इसे भी बैठने की जगह मिल सकती है, लेकिन अभी इससे कहूं कि जरा मेरी जगह और अटैची देखना, मैं गार्ड को बुलाकर ला रहा हूं तो देखेगा? सवाल ही नहीं उठता। एक बात और है, क्या भरोसा कि इतना सब करने पर भी मुझे जगह मिल ही जाएगी? उतरू न उतरू की इसी दुविधा में नीलकांत पड़े रहे और ट्रेन ने सीटी मार दी। फिर ट्रेन खिसकने लगी और आगे बढ़ने लगी। इसी समय प्लेटफॉर्म की तरफ से 8-10 काले कलूटे मजदूर फटे हाल दांत निकालते हुए दौड़ते दौड़ते आए और एक दूसरे को पुकारते चीखते एक एक करके सब इसी डब्बे में चढ़ गए। पहले तो एक चढ़ा, उसने दूसरे का हाथ पकड़कर उसे भी चढ़ा लिया, उसने तीसरे को, इस तरह सब के सब चढ़ गए। पीछे पीछे दो धाकड़ लुगाइयां भी चढ़ा ली गईं, और भागते भागते आखिरी आदमी ने गेती फावड़े तगारी बेलचे वगैरह भी चढ़वा दिए और छलांग मारकर खुद भी चढ़ गया। इस नई भीड़ से दरवाजे और गलियारे में खड़े लड़के और बाबू लोग बुरी तरह अंदर की तरफ धकेल दिए गए, एकदम कचरे की तरह। परस्पर धक्के को ठेठ अंत तक महसूस किया गया और डिब्बे में चीख पुकार मच गई। मजदूरों के तपे हुए चेहरों के बीच खिली बिजली जैसी नीग्रो हंसी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी भाषा में बुलंदी से बतियाते रहे और ट्रेन पकड़ने की खुशी मिलकर मनाते रहे। उनके कपड़े कोयले के बुरादे से काले हो रहे थे और उस पर मैल और पसीने की मोटी तह जमी हुई थी। सिफत पसंद आदमी यथासंभव उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, और एक साहब ने, जो दुर्भाग्य से उनके पास ही फंसे हुए थे, नाक पर रुमाल भी लगा लिया था। उनका बस चलता तो वे आंख, कान, सिर, पूरे शरीर पर रुमाल लगा लेते, पर इससे होता क्या? मजदूर तो जहां थे रहते ही गायब तो वे हो नहीं सकते थे, अलबत्ता उन साहब का दम जरूर घुट जाता। फिर क्या हुआ कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता तिरछे होकर लोगों के बीच से जगह बनाते हुए वे नीलकांत के सामने से होते हुए डिब्बे के बीच तक आ गए, यानी उन्हें नीलकांत को पीछे छोड़ दिया। वे न लड़ रहे थे, न बक रहे थे, न घबरा रहे थे, न आपा खो रहे थे। उन्हें देखकर लगता था कि वे इस भीड़ और परेशानी के आदी हैं और इसे कुछ नहीं समझ रहे, शायद हमेशा अप एंड डाउन करते हैं। लुगाइयां भी आ गईं। उन्होंने अपने कसे हुए जिस्मों पर कसी हुई काजले पहन रखी थी और उनके सिर के बालों की चोटियां खूब कसकर गुथी हुई थी। पीठ लगभग नंगी थी और पसीने में तर। एक पीठ नीलकांत के एकदम सामने से करीब करीब उन्हें छूते हुए गुजरी। ऐसी पुष्ट सबल सुंदर पीठ की नीलकांत के मन में वाह वाह सी होने लगी। बड़े भारी उनके घाघरे थे और जूतियां इतनी मर्दानी कि एक पड़ जाए तो थोड़ा लहू लुहान हो जाए। वे हंस रही थी और ठिठूले के मूड में थी, पर किसी की क्या मजाल जो उन्हें छेड़ने की सोच भी सके। मर्दों ने अंदर पहुंचते ही खिड़कियों के सामने से लोगों को हटाकर उन्हें जांचा परखा, खोलने की कोशिश की और फिर उनमें से एक ने, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा बल्कि उनके मेट जैसा लग रहा था, उनकी भाषा में पीछे दरवाजे के पास खड़े आदमी को पुकार कर कुछ कहा। गेंती मांगी थी क्योंकि वो लोगों के बीच से होती हुई आ गई। गेंती का सिरा एक खिड़की के सबसे निचले खाने में एक खास कोण से फंसाकर उसने अपने साथी से कहा, दबा। अब इस दूसरे आदमी ने खास जगह अपनी नपी सधी ताकत लगाई और एक झटके से खिड़की खुल गई। सब लोग अपर मजदूरों के इस कारनामे को बड़े कौतूहल से देख रहे थे और जाहिर है कि वे खिड़की के खुल जाने से चकित और खुश हुए। वे भी जिन्होंने बहुत कोशिश की थी और नाकामयाब रहे थे और सोच रहे थे कि जब हम पढ़े लिखों से नहीं खुली तो इन अपढ़ गंवारों से क्या खुलेगी भला। वे भी जिन्हें मजदूरों की क्षमता पर पूरा संदेह था और वे भी जिन्हें डर था कि गेंती या ताकत के इस्तेमाल से खिड़कियां टूट जाएंगे, सिर्फ लेटे हुए लोग खिड़कियां खुल जाने से खुश नहीं थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि अब उनका लेटा होना बाहर से भी दिख जाएगा और सब साले मच्छरों की तरह इसी डिब्बे पर टूट पड़ेंगे। लेकिन उनमें से तो दो को तो लुगाइयों ने ही पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर दिया था और खुद आराम से बैठकर पसीना सुखा रही थी। उन्होंने अपनी भाषा में लेटे हुओं को डांटकर कुछ कहा था। वे जिसका अर्थ तो नहीं आशय जरूर समझ गए थे और ये सोचकर सिकुड़ गए थे कि पैर नहीं हटाए तो पुट्ठे भी हटाने पड़ेंगे। धीरे धीरे उन बांकों ने सारी खिड़कियां खोल दी और सारे पसरे पैर और फैले पुट्ठे हटाकर रख दिए गए। ठाट से बैठ गए और फिर हंसने लगे। खड़े हुए फिर चकित थे और कई मजदूरों के साथ उनकी बराबरी में बैठने को लालायित। इस स्टेशन से मानो सारे डिब्बे का नक्शा ही बदलना शुरू हो गया था। खिड़कियां खुलते ही सारे डिब्बे में उजाला हो गया था और ताजा हवा के ठंडे झोंके यहां से वहां सपाटे भर रहे थे। बाहर हरे भरे लहराते खेत थे और पेड़ और नदियां और पहाड़, और उन सब पर बड़ी सुहानी शाम बिखर रही थी। थोड़ी देर में ये लोग कोई गीत शुरू कर देंगे, उदासियां दूर भाग जाएंगी। नीलकांत खुश थे, हालांकि खड़े थे पर खुश थे। नीलकांत सफर कर रहे थे। स्वयं प्रकाश की कहानी नीलकांत का सफर।